दिन भर 15 मार्च दिन बुधवार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। मणिपुर में पहली बार बनी भाजपा सरकार, गोवा में कल भाजपा को साबित करना है बहुमत, कांग्रेस का दावा जीत उनकी होगी।
कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, हमें विश्वास है कि हम बहुमत जीत जाएंगे।
ईवीएम पर अरविंद केजरीवाल ने फिर उठाए सवाल, कहा उनके अपने कार्यकर्ताओं के भी वोट नहीं हुए दर्ज।
कई वो बूथ हमें मिले हैं जिसमें जो कहीं दो वोट, कहीं तीन वोट, कहीं चार वोट, इसका जवाब कहाँ है, सारे वोट गए कहाँ।
महीने भर की लुका छिपी के बाद आखिर यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को किया गया गिरफ्तार, होगा दुनिया जहान भी जिसमें, आज जानिएगा कौन था अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी कार्लोस जैकल। पर पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। भारतीय राज्य मणिपुर में बीरेन सिंह के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज इम्फाल में राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने उन्हें शपथ दिलाई। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के 21 सीटें मिली हैं। नीदरलैंड्स में आम चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। कई लोग इस चुनाव को यूरोप में सत्ता विरोधी आंदोलनों के लिए परीक्षा मान रहे हैं। अगली संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ में कई दल शामिल हैं। इनमें यूरोपीय संघ और इस्लाम विरोधी फ्रीडम पार्टी भी शामिल है। गियर्ट वेल्डर्स के नेतृत्व वाली इस पार्टी के बारे में दूसरे डच राजनेताओं का कहना है कि वो गठबंधन नहीं करेंगे। वोट डालने के बाद विल्डर्स ने कहा कि देश में उनकी नीतियों का ही बोलबाला रहेगा। मध्य दक्षिणपंथी दल के मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क रुते ने कहा कि गलत तरीके की लोक लुभावनी नीतियाँ समस्याओं को और गंभीर बना देंगी। लोक लुभावन नीतियों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलत तरीके की लोक लुभावन नीतियाँ लोगों से जुड़े असल मुद्दों की बात नहीं कर रही हैं। वो उनका हल करने की बजाय सिर्फ उन्हें बढ़ा रही हैं। डच प्रधानमंत्री मार्क रुते के शब्द। यूरोप की तीन बड़े देशों में इस साल चुनाव होने हैं। नीदरलैंड्स के बाद जर्मनी और फ्रांस में भी इसी साल चुनाव होगा। यूरोपीय संघ के वरिष्ठ नेताओं ने तुर्की की तरफ से हाल में दिए बयानों की निंदा की है। तुर्की ने जर्मनी और नीदरलैंड्स के रवैये की तुलना नाजियों से की थी। इन देशों में तुर्क रैलियों की अनुमति नहीं दी गई थी। यूरोपीय आयोग के प्रमुख जियां क्लाउडे यूंकर ने कहा कि ये तुलना बिल्कुल अस्वीकार्य है।
My home country, Luxembourg, was occupied by the Nazis.
मेरे वतन लग्जमबर्ग पर नाजियों ने कब्जा कर लिया। हमारे लोगों ने बहुत पीड़ा सही। मेरे पिता को उनके तीन भाइयों के साथ जर्मन सेना में शामिल किया गया। अगर आप उस दौर की तुलना हमारे समय से कर रहे हैं तो ये पूरी तरह स्वीकार्य है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो यूरोपीय संघ में आने की बजाय उससे दूरी बना रहे हैं। यूरोपीय संघ तुर्की में शामिल नहीं हो रहा है, बल्कि तुर्की यूरोपीय संघ में शामिल हो रहा है। यूरोपीय आयोग के प्रमुख जियां क्लाउडे यूंकर के शब्द। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने भी तुर्की के खिलाफ नीदरलैंड्स का समर्थन किया है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार विदेशों में भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अमेरिका में पिछले दिनों दो अलग अलग घटनाओं में दो भारतीयों की हत्या कर दी गई और उसके बाद इसके अलावा दो दूसरे लोगों पर भी हमले किए गए थे। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत ने अमरीकी सरकार के साथ ये मुद्दा उच्च स्तर पर उठाया है।
हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। किसी भी आपातकालीन मुद्दे के समाधान के लिए हमारे दूतावास तथा कौंसुलावास स्थानीय भारतीय समुदाय के दलों के साथ निकट संपर्क बनाए हुए हैं। मैं विश्वास दिलाती हूं कि हम विदेशों में रहने वाले भारतीयों के जीवन को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि के प्रति सतर्क हैं और उनके हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव कार्य करेंगे।
भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि राजधानी दमिश्क की अदालत में हुए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 25 लोगों की जान गई है। खबरों में कहा जा रहा है कि हमलावर को पुलिस ने सिटी सेंटर के पैलेस ऑफ जस्टिस में घुसने से रोका तो उसने बम धमाका कर दिया। राहत एजेंसियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सरकार के नियंत्रण वाले इलाके में ताजा हमला राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ आंदोलन शुरू होने की 6वीं बरसी पर किया गया है। इथियोपिया की सरकार ने कहा है कि दक्षिणी सूडान के कुछ बंदूकधारियों ने 28 लोगों की हत्या कर दी है और 43 दूसरे लोगों का अपहरण कर लिया है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 1000 से ज्यादा मुरले आदिवासियों ने रविवार और सोमवार को ये हमला किया। अगले हमले सूडान की सीमा से लगते गोग और जोर नाम के इलाकों में किए गए। पाकिस्तान में 19 साल के बाद जनगणना हो रही है। इसके लिए पूरे देश में 10,000 कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए अपूर्व कृष्ण का। विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं मगर चुनावों की चर्चा जारी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। ऐसी खबरें हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी मणिपुर और गोवा में अपनी सरकारों की स्थिति साफ हो जाने के बाद ही उत्तर प्रदेश के बारे में कोई ऐलान कर सकती है। आज मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने भाजपा की पहली सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हालांकि 60 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा को केवल 21 सीटें मिली थीं और कांग्रेस को 28, मगर भाजपा ने बहुमत होने का दावा किया और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने उन्हें सरकार बनाने का न्यौता दे दिया। कांग्रेस ने राज्यपाल के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
मणिपुर की स्थानीय भाषा में शपथ ले रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता नोंगथंबम बीरेन सिंह आज प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस तरह बीजेपी ने मणिपुर में कांग्रेस के 15 वर्षों के लगातार शासन पर विराम लगा दिया है। मैतेई समुदाय से आने वाले 56 साल के बीरेन सिंह बीजेपी सरकार के पहले और मणिपुर के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने बीरेन सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जबकि वाई जॉय कुमार सिंह ने मणिपुर के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता हैं, जिनके 4 विधायक बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह कुल 8 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। एनपीपी के अलावा नागा पीपल्स फ्रंट के 4 विधायक भी बीजेपी के साथ है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक भी बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं। बीरेन सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम ईबोबी सिंह भी मौजूद थे। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को जितनी जल्दी हो सके अर्थात 22 से 23 मार्च के भीतर बहुमत साबित करने को कहा है। मणिपुर में नई सरकार बनते ही राज्य में पिछले 3 महीने से चल रहे आर्थिक नाकाबंदी को हटाने का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। मणिपुर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर आर के रंजन ने बीबीसी से कहा, जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे हम इस मुद्दे में तत्काल कार्रवाई करेंगे। मणिपुर के लोगों से हमने जो भी वादे किए हैं पूरी ईमानदारी के साथ उनको पूरा करेंगे। राज्य से आर्थिक नाकाबंदी समाप्त करने के लिए हमारी सरकार दोनों ही तरीके से आगे बढ़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 सप्ताह के अंदर राज्य से नाकाबंदी पूरी तरह उठा ली जाएगी। ये थे मणिपुर बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर आर के रंजन के शब्द। 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही बीजेपी को सरकार बनाने के जादुई आंकड़े तक पहुंचाने में असम सरकार के मंत्री एवं नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हिमंत बिश्व शर्मा की बड़ी भूमिका रही। पार्टी के शीर्ष नेता अब उनकी सराहना करने में लगे हैं। दरअसल बीरेन सिंह का राजनीतिक करियर ठीक वैसा ही रहा जैसा असम में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी सरकार में मंत्री बने हिमंत बिश्व शर्मा का रहा है। दोनों ही अपने मुख्यमंत्री के सबसे खास और संकटमोचक रहे और बाद में मतभेद इतना गहरा हुआ कि पार्टी छोड़ देनी पड़ी। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
मणिपुर की ही तरह गोवा में भी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा हुई। वहां 40 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थीं और भाजपा को 13, मगर भाजपा ने बहुमत का दावा किया और गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उनकी सरकार बनवा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब अदालत के निर्देश पर कल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को बहुमत साबित करना है और पर्रिकर का कहना है इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी।
You were present for the swearing in ceremony. All 22 plus 1 who supports were there. Again, Congress went to governor.
हम लोग शपथ ग्रहण समारोह के लिए गए थे। वहां सभी 23 विधायक जो हमें समर्थन दे रहे हैं उपस्थित थे। कांग्रेस भी आज गई थी गवर्नर के पास, मगर वे केवल 17 सदस्यों को पेश कर सके तो संख्या स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता चिंता की कोई बात है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के शब्द। मगर कांग्रेस का कहना है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। गोवा में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक विश्वजीत राणे के बारे में ऐसी खबरें आई थीं कि वो अपनी ही पार्टी से नाराज हैं, मगर आज बीबीसी के साथ बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने एक रणनीति बनाई है जिसका असर कल दिखेगा।
कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन हम सब लोग यूनाइटेड हैं, हमें विश्वास है कि हम बहुमत जीत जाएंगे।
आपके बारे में इस तरह की भी चीजें आ रही हैं कि आप बहुत खुश नहीं हैं पार्टी के प्रदर्शन से और जिस तरह से इस स्पेशली जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जिस तरह से संभाला
गया। नहीं, मैं नाराज था और मैंने ये भी व्यक्त किया था कि मुझे मेरे लीडर राहुल गांधी जी पे पूरा विश्वास है, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से ये प्रभारी लोगों ने ये सब सत्यानाश कर दिया है गोवा में, जिस तरीके का सिचुएशन बना दिया है गोवा में, उनके बारे में कुछ न कुछ हाईकमांड ने करना चाहिए। लेकिन वो बात अब कल की बात हो गई, मैं कल बहुमत के वक्त कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा।
आप जरा स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि संख्या बल के हिसाब से अभी स्थिति क्या बनती है?
बीजेपी का 13 है, कांग्रेस के 17 है और ये कल देखा जाएगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी में तो फोन पे नहीं बता सकता हूँ, इंटरव्यू में नहीं बता सकता हूँ, देखा जाएगा। बहुमत के लिए कई घंटे बाकी है, कल देखा जाएगा हाउस में क्या होता है।
लेकिन आप जिस तरह का एक्सपीरियंस है आपका, आप उसके हिसाब से
देखेंगे। मैं तो स्ट्रैटेजी फोन पे बात नहीं कर सकता हूँ, कल का स्ट्रैटेजी कल हम हाउस में हमें डिसाइड करके जाएंगे।
वहाँ पर जिस तरह से मनोहर पर्रिकर जी को शपथ दिलवा दी गई है और मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे राज्यपाल के फैसले पर?
नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस को बुलाना चाहिए था लेकिन बुलाया नहीं गया। कांग्रेस के पास 17 और एक इंडिपेंडेंट 18 था, इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस सपोर्टेड इंडिपेंडेंट था, लेकिन कांग्रेस को बहुमत व सरकार बना के बहुमत प्राप्त करने के लिए राज्यपाल ने बोलना चाहिए था एक हफ्ते के अंदर।
राणा साहब, आपको लगता है क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि राज्यपाल अपने दम पर,
लेकिन ये अभी सुप्रीम कोर्ट में गया, ये चर्चा हो चुकी है और डिसीजन आ चुका है, लेकिन उस पर चर्चा करके कोई फायदा नहीं। कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, हम सब रेडी होके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जा रहे हैं।
राणा साहब, जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का उसमें आप लोगों ने शिकायत की थी लेकिन वहाँ आधार को दुरुस्त नहीं पाया गया, क्या उसके बाद फिर आला कमान से आपकी अपनी कोई बैठक हुई है कि कहीं कोई गलती हो गई, आप ठीक से अपना केस नहीं रख पाए?
नहीं, पहले ही होने दो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, हम सब यूनाइटेड है
जी,
कांग्रेस पार्टी के विधायक सब एक है
जी। आपको लगता है कि कल शाम तक कोई ना कोई बदलाव हो सकता है मनोहर पर्रिकर की सरकार में?
नहीं, मुझे वो पता नहीं, कल देखा जाएगा फ्लोर टेस्ट।
और आप कांग्रेस से बाहर नहीं गए हैं, आप अभी भी कांग्रेस के हिस्सा?
मैं कांग्रेसमैन हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा।
गोवा से कांग्रेस के विधायक विश्वजीत राणे। इस बीच चुनाव में मात खाने के बाद अरविंद केजरीवाल और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाते हुए इनकी जांच की मांग की है। इनका आरोप है कि चुनाव के दौरान मशीनों से छेड़छाड़ की गई जिसकी वजह से ही नतीजे उम्मीद से अलग रहे। दिल्ली से सलमान रावी की रिपोर्ट।
मायावती और अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अलग अलग संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर हाल ही में संपन्न हुए 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के परिणामों पर सवाल उठाए हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। दोनों ही नेताओं ने ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए इन मशीनों की जांच की मांग की है। वैसे इस तरह की मांग समाजवादी पार्टी ने भी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के कुछ मतदान केंद्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुद थे उनके भी मत ईवीएम मशीनों में दर्ज नहीं हुए, इसलिए उन्हें इन मशीनों पर शक है।
श्री हरगोविंदपुर में एक वोट मिला है पूरे बूथ पे, बूथ नंबर 213 ताना विलेज, वहाँ कम से कम 5 वॉलंटियर्स हैं। वो कह रहे हैं हमारे तो वोट हैं, एक वोट कैसे मिल सकता, हमारे 5 वोट तो आएंगे। कई वो बूथ हमें मिले हैं जिसमें जो कहीं 2 वोट, कहीं 3 वोट, कहीं 4 वोट, इसका जवाब कहाँ है, सारे वोट गए कहाँ? क्योंकि अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है, और वो टेम्पर हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है, हम नहीं कह रहे। अब ये कहना नहीं टेम्पर प्रूफ है, टेम्पर प्रूफ है, टेम्पर प्रूफ है, हम कैसे माने? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, सुब्रमण्यम स्वामी के केस में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, ईवीएम्स आर वल्नरेबल एंड प्रोन टू टेम्परिंग। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो इसका मतलब हो सकती है। तो अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है तो फिर तो जनतंत्र ही नहीं बचता, फिर तो भारतीय जनतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है।
एक अन्य संवाददाता सम्मेलन में मायावती ने भी ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया, मगर जब उनसे पूछा गया कि मणिपुर, गोवा और पंजाब में परिणाम केंद्र में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ थे तो उन्होंने कहा,
बीजेपी के नेता लोग आजकल मीडिया में क्या बोल रहे हैं कि यदि हमें बेईमानी करनी होती तो फिर हमने पंजाब में क्यों नहीं की। यदि यही धांधली गोवा, मणिपुर और पंजाब में भी करते तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता, फिर ये आसानी से पकड़े जाते।
पूरी बहस पर बुधवार को बोलते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्षी दल अपनी हार की खीज इस तरह के आरोप लगाकर उतार रहे हैं।
Doubts were raised earlier, definitely, but they were addressed by the Election Commission. Lot of experts have been also talking about it. At the end of the day,
वेंकैया नायडू कह रहे थे कि शुरू में ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ का शक जरूर हुआ और आरोप भी लगाए गए, मगर चुनाव आयोग ने इन आरोपों का जवाब भी दे दिया। नायडू कह रहे थे कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ही नहीं। वो ये भी कह रहे थे कि जब जीत होती है तब कोई सवाल नहीं उठता, मगर जब हार होती है तो ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नायडू ने विपक्षी दलों से कहा कि वो जनादेश का सम्मान करें। हालांकि ईवीएम मशीनों पर चल रही बहस के बीच आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि दिल्ली में होने वाले निगम के चुनाव में मत पत्रों का इस्तेमाल किया जाए, मगर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की मांग को खारिज कर दिया है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान एक मंत्री गायत्री प्रजापति का नाम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सरकार के लिए एक मुसीबत बना रहा। उन पर एक सामूहिक बलात्कार में लिप्त होने का आरोप लगा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लगभग एक महीना पहले उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, मगर मंत्री जी पुलिस के साथ लुका छिपी खेलते रहे और छिपते छिपते ही अमेठी से चुनाव भी लड़ गए और हारे, और सीट गंवाने के चार दिन बाद आज उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
पिछले विधानसभा चुनाव के बाद गायत्री प्रजापति का सितारा बुलंदी पर था और इस बार के विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद हवा का रुख पलट गया। 2012 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाली अमेठी सीट पर जीत हासिल करके मंत्री का पद पुरस्कार स्वरूप हासिल किया था, लेकिन इस बार वही सीट गंवाने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। यूं तो उन पर गिरफ्तारी की तलवार गैंगरेप का केस दर्ज होने के बाद से ही लटक रही थी, लेकिन जब तक वो खुद सरकार का हिस्सा रहे तब तक महफूज रहे। सरकार जाते ही उसी लखनऊ पुलिस ने उन्हें खोज निकाला। राज्य के ADG कानून व्यवस्था दलजीत चौधरी ने बताया,
आज से पहले तक 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, आज 7वां अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है। विवेचना गुण दोष के आधार पर जारी है, बहुत जल्दी पूरा का पूरा मैटर कोर्ट में प्रेषित किया जाएगा।
गत 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गायत्री प्रजापति समेत 7 लोगों के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में FIR दर्ज की गई थी। गायत्री समेत अन्य लोगों के खिलाफ IPC की तमाम अन्य धाराओं के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। इन लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने आरोप लगाया था कि प्रजापति के सरकारी आवास पर उसका और उसकी बेटी का यौन शोषण हुआ था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद गायत्री इन आरोपों से इनकार करते रहे।
हम सीधा कह रहे हैं कि इसका इस घटना का सीधा नार्को टेस्ट हो, मैं निर्दोष हूं।
इससे पहले यूपी पुलिस और STF ने इसी मामले में अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तों को शरण देने के लिए गायत्री के 2 बेटों को भी कल पुलिस ने हिरासत में लिया था। बताया जाता है कि इसी दबाव में गायत्री आज सरेंडर करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गायत्री का मामला विधानसभा चुनाव के दौरान भी खूब छाया रहा। चुनाव में BJP की जीत के बाद गायत्री की गिरफ्तारी को पार्टी के नेता उपलब्धि बताने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ बोले,
सत्ता के संरक्षण में हर प्रकार का भ्रष्टाचार और दुराचार करता है। मुख्यमंत्री का संरक्षण से सीधे सीधे प्राप्त था। मुख्यमंत्री स्वयं उसके मंच पर जाकर के उसको जिताने की अपील करते हैं, इस तो शर्मनाक वाक्य पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने पाएगा, जो दोषी होगा ऐसे कोई भी तत्व बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
इस बीच बुधवार को भी दिनभर राजनीतिक हलकों में गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी के अलावा नए मुख्यमंत्री की ही चर्चाएं होती रहीं। लखनऊ स्थित BJP के दफ्तर में काफी गहमा गहमी बनी रही। दिल्ली से भी नेताओं का आना शुरू हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि गुरुवार को पार्टी के विधायकों की बैठक में शायद इस पर कुछ स्थिति स्पष्ट हो, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का नाम एक रहस्य ही बना हुआ है। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब दुनिया जहान। दुनिया में अलकायदा और ओसामा बिन लादेन के कुख्यात होने से बहुत पहले 1970 और 80 के दशक में एक नाम अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथियों में शुमार हुआ था। वो नाम था कार्लोस द जैकल का। इस नाम के पीछे एक ऐसी शक्ल थी जिसने अपने कारनामों से यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को बहुत परेशान किया। फ्रांस की पुलिस 2 दशकों तक उसका पीछा करने के बाद ही उसे पकड़ सकी और लंबी सुनवाई के बाद 2 मामलों में उस उम्र कैद की सजा हुई। इसी हफ्ते फ्रांस में ही कार्लोस के खिलाफ एक और मामले में सुनवाई शुरू हुई है। दुनिया जहान में आज निखिल रंजन सुना रहे हैं इसी शख्स की कहानी।
दुनिया जहान।
वियना, December 21st, 1975.
साल 1975 की 21 दिसंबर को वियना में तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के मुख्यालय पर एक चरमपंथी हमला हुआ। केवल 6 हथियारबंद लोगों ने इस मुख्यालय को वहां मौजूद मंत्रियों के लिए जेल में तब्दील कर दिया। 3 लोगों की जान गई और ऑस्ट्रिया के चांसलर को न सिर्फ इन्हें वहां से जाने के लिए जेट विमान मुहैया करानी पड़ी, बल्कि हर 2 घंटे पर देश की प्रसारण सेवाओं से फलस्तीन के पक्ष में संदेश प्रसारित करने पर भी विवश होना पड़ा। 6 लोगों के उस हथियारबंद गुट का नेतृत्व किया था 24 साल के इलीच रेमिरेज सांचेज ने, जो इस कार्रवाई को अंजाम देने के पहले ही कार्लोस के नाम से चर्चित हो चुके थे। इस घटना के बाद कार्लोस का नाम पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के रक्षा संपादक सुशांत सिंह,
उसके बाद ही उनका नाम बहुत बहुत बड़ा हुआ। उससे पहले तो वो एक मामूली, जैसे उस टाइम तो आपको याद है 70 के दशक में पैलेस्टीन में बहुत सारे इस तरह के मिलिटेंट या टेररिस्ट या यू नो फाइटर्स, आप जो भी बोले, बहुत सारे लोग इस तरह की ट्रेनिंग करते थे और काम करते थे, जैसा कि म्यूनिक ओलंपिक्स में हुआ और भी जगह उन्होंने हमले किए इसराइली लोगों के खिलाफ। तो ये तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस वक्त काम कर रहे थे, उसी के साथ इन्होंने ट्रेनिंग की थी और उसी के लिए ये काम कर रहे थे। पर वियना के बाद, क्योंकि वियना का इतना इंटरनेशनल था और उसमें ईरान, सऊदी अरेबिया और भी कई सारे देश इन्वॉल्व थे, कार्लोस को ख्यात उसके बाद ही।
कार्लोस ने 60 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया, इनमें ज्यादातर मंत्री थे। बाद में उन्होंने सरकार के अनुरोध पर 20 बंधकों को रिहा कर दिया और 42 बंधकों समेत उनकी टीम DC-9 जेट विमान से रवाना हुई। रास्ते में विमान लीबिया के त्रिपोली में उतरा, वहां कुछ और बंधकों को रिहा किया गया और फिर बाकियों को लेकर कार्लोस अल्जीरिया चले गए। कहा जाता है कि कार्लोस को हर बंधक की रिहाई के बदले करीब $20 लाख की रकम मिली थी। कार्लोस ने ये कार्रवाई फलस्तीनी संगठन पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन यानी PFLP के लिए की थी, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद PFLP ने उन्हें संगठन से बाहर कर दिया। सुशांत सिंह इसकी वजह बताते हैं।
ऐसा माना जाता है कि जो फिरौती की रकम वियना के बाद उनको मिली, उस रकम को हड़प गए और वो रकम ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिली, तो उसकी वजह से भी शायद उनका कुछ मनमुटा, उनका कुछ दूरियां हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन से और उस ऑर्गेनाइजेशन से उनको निकाल दिया गया और दूर कर दिया गया। पर वो अपने आप को वो फिर भी एक फिलिस्तीन फाइटर और फिलिस्तीनी कॉज के लिए बोलते रहे।
कार्लोस ने लंदन में मार्क एंड स्पेंसर के मालिक एक यहूदी कारोबारी जोसेफ सीफ को सबसे पहले निशाना बनाया। बहुत करीब से गोली मारने के बावजूद वो बच गए, क्योंकि कार्लोस की पिस्टल फंस गई और दूसरी गोली नहीं चल सकी। कार्लोस को भागना पड़ा। इसके बाद 1974 में फ्रांस के एक शॉपिंग सेंटर में ग्रेनेड फेंकने का आरोप कार्लोस पर लगा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई दर्जन लोग घायल हुए। साल 1975 में फ्रांस की पुलिस ने माइकल मुखरबाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो PFLP की तरफ से कार्लोस को निर्देश देता था। माइकल पुलिस को अपने साथ कार्लोस के एक फ्लैट में लेकर गया। कार्लोस ने इन लोगों का स्वागत किया, इन्हें ड्रिंक परोसा और फिर दराज से पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। माइकल और 2 पुलिस वालों की जान गई, 1 पुलिसकर्मी घायल भी हुआ। फ्रांस की पुलिस इस घटना के बाद उसके पीछे पड़ गई और फ्रांस के जासूस हर तरफ उसकी तलाश में जुट गए। इसी दौरान लंदन के एक फ्लैट में उन्हें पकड़ने के लिए छापे के दौरान फ्रेडरिक फॉर्सेथ का उपन्यास द डे ऑफ द जैकल हाथ लगा। यहीं से मीडिया के लिए कार्लोस द जैकल बन गया। यूरोप और कार्लोस की ये आंख मिचौली पूरे 2 दशक तक चलती रही। आखिरकार 1994 में उसे सूडान में गिरफ्तार किया गया। इस पूरे दौर में कार्लोस अपनी हरकतों से फ्रांस और दूसरे देशों के सीने पर जख्म देता रहा।
उसके बाद जिन्होंने बड़े हमले किए वो 80 के दशक में किए, जो कि फ्रांस में हुए, जबकि फ्रांस से उनकी उस समय की प्रेमिका और बाद में उनकी पत्नी बनी, उनको एक टेरर अटैक के लिए गिरफ्तार कर लिया और उसके बदले में उन्होंने 4 अटैक 82 और 83 में किए फ्रांस के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर और बाकी जगह के ऊपर। वो उसके लिए ही अभी जो उनको सजा मिल रही है फ्रांस से, वो उनको उन्हीं हमलों के लिए कार्लोस को सजा मिल रही है।
गिरफ्तार होने पर फ्रांस में लंबी सुनवाई के बाद कार्लोस को 2011 और 2013 में 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब 1974 में पेरिस के शॉपिंग सेंटर पर हुए ग्रेनेड हमले के आरोप में भी उस पर मुकदमा शुरू किया गया है। सोमवार को कार्लोस ने अदालत में बयान दिया कि इस हमले में उसका हाथ नहीं था, साथ ही ये भी कि वो फलस्तीनी क्रांतिकारी है और सिर्फ क्रांति के लिए ही लोगों को मारा है। कार्लोस ने कहा,
फलस्तीनी विरोध के लिए मैंने जितने लोगों को मारा उतना किसी और ने नहीं, और अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। सारी लड़ाइयों में दोनों तरफ पीड़ित हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
वेनेजुएला में एक अमीर वकील के घर पैदा हुए कार्लोस को कम्युनिस्ट विचारधारा विरासत में मिली। हालांकि बहुत जल्द ही उनकी माँ उनके भाई बहनों के साथ उन्हें लंदन लेकर चली गई और उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो मॉस्को गए, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जल्द ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। वेनेजुएला में जन्मे कार्लोस फलस्तीनी लड़ाकों के संपर्क में कैसे आ गए?
देखिए, ऐसा हुआ उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे 70 के दशक में, जो फलस्तीन के ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हों, चाहे वो थ्योरिस्ट हों, चाहे वो फाइटर्स हों। तो ऐसा नहीं है कि कार्लोस अकेले थे, क्योंकि वो सोवियत यूनियन में गए, वहां पर उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की, जहां से वो 1970 में निकाल दिए गए। तो उस तरह से उनका आइडियोलॉजिकल जो उनका कमिटमेंट था और जो उनका विचार था वो इस तरह ही का था। और इस तरह के उस समय बहुत से लोग लड़ रहे थे। आपको पता है कि फिलिस्तीन में उस समय सिर्फ फिलिस्तीनी लोग ही नहीं, दुनिया भर के लोग जाके लड़ते थे कि भाई, क्योंकि वो मानते थे कि ये एक बड़ी रेवोल्यूशनरी कॉज है और एक बड़ी प्रोग्रेसिव कॉज है और ये ज़ायनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसलिए वो उस तरह की इसलिए बड़ा इसमें आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि कार्लोस जैसा बंदा जो वेनेजुएला से आया और जो कि सोवियत यूनियन वगैरह में जिसने पढ़ाई की, वो बाद में जाके वहां जाके फिलिस्तीनियों के संपर्क में आया और उनके साथ लड़ाई सीखी।
पीएफएलपी से अलग होने के बाद कार्लोस कई और देशों की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में आए। इनमें केजीबी से लेकर जर्मन खुफिया एजेंसी स्टासी का भी नाम है। इसके अलावा सीरिया, लीबिया और इराक ने भी कार्लोस का इस्तेमाल किया।
वो तो तकरीबन स्वतंत्र रूप से काम करते रहे और उनका इतना बड़ा वो हो गया कि वो फिर ऑलमोस्ट ऑन हायर हो गए कि भाई फला फला ने बोला, सीरिया ने बोला तो वहां जाके काम कर लिया, और लीबिया ने कुछ बोला तो लीबिया के लिए काम कर दिया। और जहां तक कि फिर भी वो ये बताने की कोशिश करते थे कि वो एक रेवोल्यूशनरी लड़ाई लड़ रहे हैं और फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस घटना के बाद जो मनमुटाव हुआ और जिस तरह से वो फ्रीलांसर हो गए कि 2 साल सूडान में और 3 साल यहाँ पर और 2 साल लीबिया के अंदर, वो बहुत सारे कंट्रीज में रहे और बहुत सारे देशों में रहे और उनके लिए उन्होंने अलग अलग तरह की कार्रवाइयाँ की, पर ऐसा कोई कमिटेड फिलिस्तीनी कॉज के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उन्होंने कोई हरकत नहीं की। ऑल्दो वो अपने आप को रेवोल्यूशनरी मानते रहे और अमरीका के खिलाफ काम करने वाला मानते रहे, आपको जान के आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन की सपोर्ट में स्टेटमेंट भी दिए और बोला कि ओसामा बिन लादेन ने बड़ा अच्छा काम किया।
लगातार घूमते रहने और अलग अलग शहरों में ठिकाना बनाने वाले कार्लोस कई भाषाएं जानते हैं और इसे भी उनका एक बड़ा हथियार माना जाता है। खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारी बिली वॉन ने सूडान में उनका पता लगाया था। उन्होंने रिटायर होने के बाद BBC से एक बातचीत में कहा,
If you have the language, comprehensive language ability, you can fit in anywhere.
अगर आपके पास भाषा पर जबरदस्त पकड़ है तो आप कहीं भी फिट हो सकते हैं, और कार्लोस के पास यही खूबी थी। यही उसका रहस्य था जिसने उसे सफल बनाया। वो अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में दक्ष थे, साथ ही कई और भाषाओं में भी।
कार्लोस की प्रेमिकाओं की फहरिश्त भी काफी लंबी है और उन्हें खूबसूरत लड़कियों को अपने मकसद में उपयोग करने का भी महारत ही माना जाता है। इस वक्त जब वो फ्रांस की जेल में बंद हैं, तो अदालत में उनके बचाव के लिए उनकी वकील पत्नी ही उनका साथ दे रही हैं। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
कैसा लगा आज का दुनिया जहान, हमें जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं bbchindi.com पर, जहां कई खबरें हैं और एक खबर है मणिपुर की, जहां के मुख्यमंत्री के बारे में एक खबर है कि वो एक फुटबॉलर और पत्रकार भी रह चुके हैं। एन बीरेन सिंह को आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसमें कहा गया है खबर में कि वो 1981 में डूरंट कप जीतने वाली BSF टीम के भी सदस्य रहे हैं और बाद में उन्होंने एक अखबार का संपादन भी किया। तो आइए bbchindi.com पर पूरी खबर पढ़ने के लिए। और अंत में मुख्य समाचार।
BBC समाचार। भारतीय राज्य मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। नीदरलैंड्स में आम चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। यूरोपीय संघ के वरिष्ठ नेताओं ने तुर्की की तरफ से हाल में दिए बयानों की निंदा की है। तुर्की ने जर्मनी और नीदरलैंड्स के रवैये की तुलना नाजियों से की थी। भारतीय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार विदेशों में भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि राजधानी दमिश्क की अदालत में हुए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 25 लोगों की जान गई है और पाकिस्तान में 19 सालों के बाद जनगणना हो रही है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। और आज के दिन भर कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया राजेश चौहान ने। अब अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। नमस्कार।